मुमकिन और नामुमकिन, पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। ये वाकया जॉर्ज डैनजिग के बारे में है जो 1939 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से पीएचडी कर रहा था। जॉर्ज डैनजिग अपनी एक स्टेटिस्टिक्स की क्लास में देर से पहुंचा था। उसे ब्लैक बोर्ड पर दो सवाल लिखे नजर आए। वो ये समझा कि ये सवालात होमवर्क के लिए दिए गए हैं, चुनाचे उसने उन सवालों को लिख लिया। घर जाके जॉर्ज डैनजिग ने इन सवालों को हल करने की कोशिश की, मगर वो बहुत मुश्किल सवाल थे। जॉर्ज डैनजिग उन सवालों को हल करने की कोशिश करता रहा और आखिरकार उनको हल कर लिया। जॉर्ज डैनजिग ने अपने प्रोफेसर को कॉल करके माजरत की कि उसको इतना वक्त लग गया इन सवालों को हल करने में, और पूछा कि क्या वो इन सवालों के जवाब जमा करवा सकता है। प्रोफेसर ने कहा कि वो इन सवालों के जवाब को उसकी डेस्क पर रख सकता है। जॉर्ज डैनजिग ने बेदिली के साथ उन सवालों के जवाब को प्रोफेसर की डेस्क पर रख दिया, क्योंकि वो कागजों से भरी हुई थी और जॉर्ज डैनजिग को खतरा था कि वो उसके जवाब, जिनको उसने इतने मुश्किल से हल किया था, उन कागजों के ढेर में खो ना जाए। कुछ हफ्तों के बाद एक इतवार की सुबह जॉर्ज डैनजिग की आंख खुली, क्योंकि कोई उसके दरवाजे को जोर से पीट रहा था। जॉर्ज डैनजिग ने दरवाजा खोला तो उसका प्रोफेसर नेमन था। प्रोफेसर तेजी से कुछ कागजों के साथ अंदर आ गया और जज्बाती अंदाज से कहा कि मैंने तुम्हारे पेपर्स के बारे में तारुफ लिखा है, तुम इनको पढ़ लो ताकि मैं इसको फौरन शाया करने के लिए भेज दूं। एक लम्हे के लिए जॉर्ज डैनजिग को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। बाद में उसको पता चला कि जिन दो सवालों को उसने होमवर्क समझकर हल कर लिया था, वो हकीकत में स्टेटिस्टिक्स के वो मशहूर सवाल थे जिनको कोई हल नहीं कर पाया था। ये बहुत अच्छा हुआ कि जॉर्ज डैनजिग को यह मालूम नहीं था कि वो सवालात नामुमकिन यानी अनसॉल्वेबल समझे जाते हैं। अगर उसे ये मालूम होता तो शायद वो उन सवालों को हल करने की कोशिश ही नहीं करता, या फिर उनको हल नहीं कर पाता। काश कि हमें कोई ये ना बताए कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। जब तक कि एक शख्स रॉजर बैनिस्टर ने एक मील का फासला 4 मिनट में दौड़कर तय करने का रैकेट कायम नहीं किया था, कोई इतना तेज दौड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। मगर जब लोगों को यह पता चल गया कि ऐसा मुमकिन है, तो एक साल के अंदर अंदर तकरीबन 200 लोगों ने ऐसा कर दिखाया। आखिर इंसान के पास क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो बाज़ औक़ात नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर देता है। यह हमारा अगला टॉपिक है, लामहदूद सरमाया जो हर इंसान के पास है। जब भी कोई शख्स कोई बिजनेस करना चाहता है, वो ये देखता है कि उसके पास कितना सरमाया है या क्या सलाहियत या खूबी है जिसको इस्तेमाल करके वो तरक्की कर सकता है। अच्छी बात यह है कि हम में से हर शख्स दुनिया में हर जगह इतने सरमाए के साथ पैदा हुआ है कि अगर वो इसका सिर्फ 10% भी इस्तेमाल करना सीख जाए तो उसका शुमार दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में हो सकता है। वो सरमाया क्या है और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इंसानी दिमाग, अगर कोई ऐसा कंप्यूटर बनाने की कोशिश की जाए जो दिमाग की तरह काम करे, तो इसके लिए तकरीबन $100 मिलियन लगेंगे। क्या आपको अंदाजा है कि आपके दिमाग की कीमत यानी वैल्यू $100 मिलियन से ज्यादा है? आइए दिमाग के बारे में और सीखते हैं। इंसानी दिमाग इस कायनात में पाए जाने वाली चीजों में सबसे ज्यादा पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जब मैंने ये बात अपनी क्लास में बताई तो एक स्टूडेंट ने कहा कि दुनिया में एक चीज ऐसी है जो इंसानी दिमाग से ज्यादा पेचीदा है, वो चीज मेरी बीवी का दिमाग है, मैं इसे नहीं समझ सकता। जो मर्द हजरात इस बात पे हंस रहे हैं, चाहिए कि वो इस किताब में क्या औरतें मर्दों से बेहतर है जरूर पढ़ लें। इंसानी दिमाग में हर मिनट में तकरीबन 1 लाख से लेकर 10 लाख मुख्तलिफ कीमियाई अमल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। आपके दिमाग में कम से कम 10 खरब 1000 बिलियन दिमागी खलियात यानी नर्व या न्यूरॉन सेल्स हैं, और हर नर्व सेल 1 लाख दूसरे नर्व सेल से मुख्तलिफ तरीके से अमल इंटरेक्ट कर सकता है। इस तरह आपका दिमाग इस काबिल है कि वह तकरीबन 10^800 मुख्तलिफ ख्यालात पैदा कर सकता है। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि यह कितना बड़ा नंबर है। एटम इस कायनात के सबसे छोटे जर्रात पार्टिकल्स में से एक है, और जो सबसे बड़ी चीज हम जानते हैं वो खुद कायनात है। आपकी सिर्फ एक उंगली में करोड़ों एटम है। यह अंदाजा लगाया गया है कि इस पूरी कायनात में तकरीबन 10^100 एटम है। इस तरह दिमाग में पैदा होने वाले ख्यालात की तादाद इस पूरी कायनात में मौजूद तमाम एटमों से भी बहुत ज्यादा है। आप अगर दिमाग की सलाहियत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो सिर्फ ये देखिए कि एक इंसानी बच्चा किस तरह इंतहाई कम अरसे में एक इंसानी जबान सीख लेता है। तकरीबन तमाम बच्चे 3 साल की उम्र से पहले एक जबान बोलना शुरू कर देते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि आपने इस दुनिया में आंख खोली और आपको कुछ पता नहीं कि ये कौन सी जगह है, आपके आसपास क्या चीजें हैं और ये जो आवाजें आ रही हैं उनका क्या मतलब है। तीन साल के अंदर अंदर आप अपने आसपास की चीज़ों को पहचानने लगते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि जब कोई कहता है कि मैं ऑफिस गाड़ी में जा रहा हूँ और शाम को वापस आऊँगा, तो इस जुमले में 13 अल्फाज हैं और इनका मतलब क्या है। आप ना सिर्फ एक जबान लैंग्वेज समझने लगते हैं बल्कि बोलना भी सीख जाते हैं 3 साल की उम्र से पहले पहले। ज़रा सोचिए कि अगर 3 साल की उम्र तक आप ये कर सकते हैं तो बाद में क्या नहीं कर सकते। अगर आज भी कोई मुझे कंप्यूटर, टीवी, रेडियो या हवाई जहाज़ के बारे में बताए और अगर मैंने इन चीज़ों को ना देखा हो और उनके बारे में पहले ना सुना हो, तो मैं इस बात का तस्वर भी नहीं कर सकता कि ये चीज़ें वजूद में आ सकती हैं। कोई वाकया मुझसे हज़ारों मील के फासले पे हो रहा हो और मैं उसको देख सकता हूँ, मैं हवा में उड़ के हज़ारों मीलों का फासला घंटों में तय कर सकता हूँ, मैं पूरी लाइब्रेरी को एक कंप्यूटर डिस्क में स्टोर कर सकता हूँ, ये कैसे मुमकिन है? दिमाग आज भी हैरान होता है और उसे यकीन नहीं आता। मगर ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं और कुछ लोगों ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके इन नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना दिया है। मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है अपने दिमाग को कम से कम इस्तेमाल करता है। कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में सीखता है उसका 70% 6 साल की उम्र तक सीख जाता है, यानी कि 6 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 70 साल की उम्र तक हम सिर्फ 30% सीखते हैं। ये समझिए कि अगर एक इंसान पूरी ज़िंदगी में 100 सफ़े की एक किताब पढ़ सकता है तो 6 साल की उम्र तक 70 सफ़े पढ़ लेता है और इसके बाद की सारी उम्र 30 सफ़े पढ़ने में लगा देता है। इस तरह वो तकरीबन 12 सफ़े हर साल पढ़ता या सीखता है और 6 साल की उम्र के बाद वो सिर्फ आधा सफ़ा हर साल पढ़ता या सीखता है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आता तो सोचिए कि पिछले 5 सालों में कितनी नई चीज़ें आपने सीखी हैं। अपने अब्बू या अम्मी से पूछिए कि पिछले 20 सालों में कितनी नई चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि दुनिया के किसी भी इंसान ने, जिसमें अजीम तरीन साइंसदान भी शामिल हैं, अपने दिमाग की सलाहियत का 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, जबकि आम लोग अपने दिमाग की सलाहियत का 1% भी इस्तेमाल नहीं करते। हमें दिमाग की सलाहियतों का अंदाज़ा हो गया, अब सवाल यह है कि हम दिमाग की इस अजीम ताकत को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम अगले बाब में देखेंगे। गोल्स का करिश्मा। पिछले बाब में या लेक्चर में हमने ये सीखा था कि इंसानी दिमाग दुनिया की पेचीदा तरीन चीज़ है और आम लोग अपने दिमाग का 1% भी इस्तेमाल नहीं करते। इस बाब में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह अपने दिमाग की इस बे इंतहा सलाहियत को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसानी दिमाग की सलाहियत को इस्तेमाल करने का आसान तरीका यह है कि आप फोकस करना सीखें, यानी अपनी तमाम दिमागी तवानाई सिर्फ एक मसले को हल करने में लगाएं। फोकस करने का आसान तरीका यह है कि आप गोल सेट करें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी आमदनी $30,000 सालाना है तो आप ये गोल सेट कर सकते हैं कि मैं 2 साल के अंदर अंदर अपनी आमदनी $50,000 कर दूंगा। अगर आप वाकई अपने इरादे में पक्के हैं और इस गोल को पूरा करने के लिए मेहनत करने पर तैयार हैं तो यकीनन आप अपनी आमदनी 2 साल में $50,000 कर सकते हैं। अब आपको बैठकर ये सोचना है कि वह कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको मज़ीद ट्रेनिंग लेनी पड़े या अपना प्रोफेशन बदलना पड़े। आप इन लोगों से मालूमात हासिल करें जो $50,000 सालाना कमा रहे हैं। आप मुख्तलिफ प्रोफेशंस के बारे में मालूमात हासिल करें कि इनमें पैसा कमाने का कितना पोटेंशियल है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो वह अपना सारा वक्त ये सोचने में लगाइए कि आप किस तरह अपने बिजनेस की सेल्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप मौजूदा ब्रांच में मजीद बिजनेस नहीं बढ़ा सकते तो फिर एक और ब्रांच खोलने के बारे में सोचिए। आपको सुबह शाम अपने गोल को पढ़ना है और हर वक्त ये सोचना है कि आप किस तरह अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। लोगों के गोल्स होते हैं मगर वो इस हद तक महदूद होते हैं कि इन्हें बड़े होकर क्या बनना है। मिसाल के तौर पर कॉलेज के तालिब इल्म का सिर्फ ये गोल होता है कि इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या वकील वगैरह बनना है। ज़िंदगी या करियर में सही कामयाबी के लिए ये काफ़ी नहीं है। आम तौर पर हर फील्ड में तकरीबन 20% लोग 80% आमदनी या इनकम कमाते हैं, यानी कि ज़्यादातर दौलत एक छोटे ग्रुप के पास ही जमा होती है हर फील्ड में। इन कामयाब तरीन लोगों में से ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो अपने गोल सेट करते हैं और उनको हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। गोल सेट करने और उनको हासिल करने के लिए 7 मराहिल या स्टेप ज़रूरी हैं। नंबर 1, अच्छी तरह सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। नंबर 2, इसको कागज़ में लिख लीजिए। नंबर 3, अब ये लिखिए कि आप क्यों ये गोल हासिल करना चाहते हैं। आप फोकस नहीं कर सकते अगर ये क्लियर ना हो कि आप क्यों अपना गोल हासिल करना चाहते हैं। नंबर 4, अब उन रुकावटों के बारे में सोचिए और उनको लिखिए जो आपको दूर करनी है अपने गोल को हासिल करने के लिए। नंबर 5, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपकी मदद कर सकते हैं अपने गोल को हासिल करने के लिए। नंबर 6, सोचिए और लिखिए कि आपको क्या सीखना है अपने गोल हासिल करने के लिए। नंबर 7, तारीख लिखिए जब तक आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। एक डेडलाइन या तारीख के बगैर आपका गोल एक ख्वाब है, गोल नहीं है। किसी भी किस्म के हालात में और एक जैसा तालीमी बैकग्राउंड के बावजूद वो लोग बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं जो सही तरह से गोल सेट करते हैं। आइए मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि किस तरह मैंने अमेरिका में आके गोल सेट किए और उनको हासिल किया है। 1988 में मैंने MS कंप्यूटर साइंस में मुकम्मल कर लिया था और एक प्रोग्रामर के तौर पे जॉब शुरू कर दी थी। 1990 तक मेरी तनख्वाह तकरीबन $40,000 पर ईयर थी। मेरे जहन में समाया हुआ था कि मुझे अपनी आमदनी बढ़ानी है और मैं अपनी आमदनी में कोई हद या लिमिट नहीं देखना चाहता था। मुझे याद है कि उस जमाने में मैंने अपने एक दोस्त से कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई हद लिमिटेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मुकम्मल आज़ादी चाहिए हर वो काम करने के लिए जो मैं करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मैं दुनिया की बेहतरीन गाड़ी मर्सिडीज़ या BMW चलाना चाहता हूँ तो मैं इस काबिल होना चाहता हूँ। मैं जब पाकिस्तान जाना चाहूँ जा सकूँ या जब अपने वालदैन को बुलाना चाहूँ बुला सकूँ। मैं इस काबिल होना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे दुनिया की महफूज तरीन गाड़ी में सफ़र करें और बेहतरीन स्कूलों में तालीम हासिल करें। मैं कभी ये सुनना नहीं चाहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मेरी ख्वाहिश थी, एक शदीद ख्वाहिश यानी बर्निंग डिज़ायर। मुझे अंदाज़ा था कि मैं अपनी मौजूदा जॉब में $45,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता। चुनाचे मैंने अपना बिज़नेस खोलने का फ़ैसला किया। मेरे पास सिर्फ $4,000 बैंक में थे क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करता था। मैंने 200 स्क्वायर फीट की जगह किराए पे ली और कंप्यूटर ट्रेनिंग और कंसल्टिंग का बिज़नेस शुरू कर दिया। ये वाजा नहीं था कि क्या करना है और किस तरह करना है। पहले 6 महीने में टोटल आमदनी तकरीबन $100 थी। इस तरह जगह का किराया भी जेब से देना पड़ रहा था, मगर मुस्तकिल सोचने और मुख्तलिफ तरकीबें आजमाने के बाद आखिरकार कामयाबी हो गई। 1992 में मेरी आमदनी $41,000 थी। 1993 में $100,000 से ज़्यादा थी। जब मेरा अकाउंटेंट इस बात पर हैरान हुआ तो मैंने उसको अपनी डायरी दिखाई जिसमें January 1, 1993 की तारीख में मेरा ये गोल लिखा हुआ था कि मैं इस साल अपनी आमदनी $100,000 से ज़्यादा कर लूँगा। उस वक्त से मैं मुस्तकिल अपने गोल सेट कर रहा हूँ, उनको हासिल कर रहा हूँ। यही वजह है कि अमरीका में अच्छे या बुरे हालात के बावजूद आज भी मैं एक $multi-million का बिज़नेस चला रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये सब किस्मत या लक से नहीं हुआ। मैंने अपने गोल्स को हासिल करने के लिए इसकी पूरी कीमत अदा की है। अपने बिजनेस के इब्तदाई 5 सालों में मैंने TV नहीं देखा, अखबार नहीं पढ़ा और रेडियो नहीं सुना। मैंने 7 दिन 16-16 घंटे काम किया है। अगर आप भी इस तरह फोकस कर सकते हैं अपने गोल्स को हासिल करने के लिए तो यकीनन आप उनको हासिल कर लेंगे। गोल सेट करने के बारे में उनको हासिल करने के लिए चंद बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ऐसा गोल सेट करें जो अमली यानी रियलिस्टिक हो और जिसे आप हासिल कर सकें। मसलन अगर आप इस वक्त $30,000 साल के कमा रहे हैं तो 2 साल में 50,000 का गोल अमली रियलिस्टिक है, मगर 6 महीने में इस गोल को हासिल करना अमली या रियलिस्टिक नहीं है। ये बिल्कुल वाजा होना चाहिए कि मैं अपनी आमदनी को 20,000 बढ़ाऊंगा और 2 साल में। इस किस्त में हमने ये सीखा है कि गोल्स की अहमियत क्यों है और उनको किस तरह हासिल किया जाता है। अगली किस्त में हम ये सीखेंगे कि वो क्या चीज़ें जो तरक्की करने के लिए आपकी ज़हानत या इंटेलिजेंस और तालीम से ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कामों पर फोकस किस तरह किया जाए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अपने वक्त को सही तरह से कैसे मैनेज किया जाए। आपका शुक्रिया सुनने का।